पञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महाबदन्नाय कृष्णप्रेमकृपाय कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्नि गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै सदाय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तदभक्ताय जनम् प्रव्रजन्तमनुपेतमपे द्वैपायनो विरहकातरया जुहा पुत्रेति तन्मयतया सर्वो वेद तं सर्वभूतविदम् तवैवास्मि तवैवास्मि स्वामि त्वया विना इति विचारयामि आज रूपानुभव श्री जी श्री जीव गोस्वामी की आविर्भाव तिथि आज आविर्भाव तिथि है। जीव गोस्वामी अपने गुरु श्री रूप गोस्वामी को प्रकाशित किया, उनके जितने भी ग्रंथ हैं उसको संशोधन तो नहीं कर सकते हैं, किंतु फिर भी दूसरा शब्द भी नहीं है। क्या किया? संशोधन किया। रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने उनके ऊपर में भाग दिया था और जी गोस्वामी ने ही श्रीधरूप गोस्वामी के जितने स्तव स्तुतियां हैं उस सबको एकत्र कर संग्रहित कर स्तव माला के रूप में ग्रंथन किया। विशेष करके श्री रूप गोस्वामी के बाद में श्री चैतन्य महाप्रभु के दार्शनिक विचारों का अपने ग्रंथों के माध्यम से प्रचार और भी गोपाल चंपू के माध्यम से भी गोलोक वृंदावन में कृष्ण तत्व के संबंध में उनके लीलाओं के संबंध में दृष्टिकोण दिया। यद्यपि रूप गोस्वामी से और जीव गोस्वामी के दृष्टिकोण में कुछ अंतर है मालूम होता है, किंतु भक्ति विनोद ठाकुर जी ने कहा कि उनका ये विवाद नहीं है, विचार वैशिष्ट है। एक कृष्ण तत्व की दृष्टि से कहा है, राधा तत्व की दृष्टि के तत्व की दृष्टि से जीव गोस्वामी ने विचार किया है, जो कोई स्वकीय है ही नहीं, परकिया है ही नहीं, सभी स्वकीय। और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने लीला की दृष्टि से बतलाया कि सब जितनी है गोपियां वो सभी पावनी, दोनों की प्रतिभा झलकती है। कैसे दोनों की प्रतिभाएं थी, जीव गोस्वामी की कैसी थी और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी को भी कम मत आंकना। रूप गोस्वामी के समस्त ग्रंथों को उन्होंने सार दे करके सबको बनाया है। भक्ति स्वामी सिंधु बिंदु उज्ज्वल किरण और भगवतामृत कणा माधुर्य कादंबिनी राग भट्ट चंद्रिका श्रीमद भागवत की टीका उज्ज्वल नीलमणि की टीका गीता की टीका जो कुछ किया है ये अतुलनीय है उनके भी। और जी गोस्वामी ने भी उज्ज्वलिनमणि की टीका की, भक्ति स्वामी सिंधु की श्रीमद भागवत का किया, सर संदर्भ किया, ये दोनों अविस्मरणीय है। इसलिए इनके चरणों में आज हम पुष्पांजलि प्रदान करते हैं। वो सब पर दया करें भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के नित्य प्रिय परिकर हैं और कृष्ण लीला के भी विलास मंजरी कहे जाते हैं। अब हम लोग श्रीमद् भागवतामृत से यू कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश। Can you?
So today is the appearance day of Srila Jiva Goswami Pai. His direct disciple of Srila Rupa Goswami Pai. And Srila Rupa Goswami Pai engaged him in the service of Sanskaran. It means proofreading all his writings, all his books. Gurudev did not feel satisfied with the one Sanskaran proofreading because Srila Rupa Goswami Pad cannot make any mistake. But anyway, he engaged Srila Jiva Goswami Pad in this way to bestow mercy upon him. So Peerings was his nephew of Rupa Goswami and Sanatana Goswami. And he preached all the teachings of Rupa Goswami, but he supported them with evidence and explained them from the point of view of the darshan, the philosophical point of view. And he has written Gopal Champu and explained all the pastimes of Krishna from point of view of philosophy. It seems that Srila Jiva Goswami Pad has supported Swakya Vaj, the conception that Radha and Krishna are married, and that Vishnu Chaitakar has supported Parikya Vaj. But Srila Bhaktivinoda Thakur, he has reconciled the explanations of both of them and called this Vichara Vaishishtya, or only a speciality in their viewpoints, but not actually a difference in philosophy. So Srila Vishnu Thakur, he's not less than Srila Jiva Goswami. He's composed so many granthas. He's commented on the Bhakti Rasamrita Sindhu and the Lagu Bhagavatamrita and the Ujjwala Nilamani of Srila Rupa Goswami in his three books, Bindu, Kiran and Kana. He's written Madhurya Kadambini, which is also commentary on Adoshrada, etc. from Bhakti Rasamrita Sindhu. And he has also explained three verses dealing with Radha Nuba Bhakti from Bhakti Rasamrita Sindhu in his book, Radha Vatna Chandrika. Srila Vishnu Chavi Thakur has written commentaries on Bhakti Rasamrita Sindhu and Ujjwala Nilamani, Ananda Chandrika Tika. And he's written commentary on the 10th canto of Srimad Bhagavatam, Sarada Darshini. So Vishnu Chavi Thakur wrote very prolifically. And Srila Jiva Goswami Pad himself, he wrote many commentaries on Srimad Bhagavatam, including six sandarbhas, and he also wrote commentary on Ujjwala Nilamani, Bhakti Rasamrita Sindhu. So today, on his appearance day, we pray to him and remember his lotus feet, because especially he is the eternal associate of Mahaprabhu and he is the eternal associate of Sri Radha Krishna in his form as Sri Vilas Manjari. So now Srila Gurudev will continue with the explanation of Srila Vishnu Goswami Pad's great Bhagavatamrita Bhakti Rasayana.
जयति जन निवासो देवकी जन्म बाधो। देवकी जन्म बाधो, आज जन निवासो में हमने कुछ सनातन गोस्वामी के विचार प्रकट किए थे। जन माने निखिल विश्व ब्रह्मांड के जीवों के आश्रय, और आश्रय होते हुए भी सबके हृदय में निवास, जन निवास, जनों के हृदय में निवास करने वाले हैं, सबके आश्रय हैं, सब उनमें हैं, और वो भी उनमें हैं, जन निवास। अथवा जन निवास माने स्वजन वाचक जन, कृष्ण के निजी जन हैं, स्वजन वाचक अपने भक्तगण उनके हृदय में विशेष रूप से निवास करते हैं और सबके हृदय में साक्षी के रूप में निवास करते हैं। किस रूप में? परमात्मा रूप में। और अपने निजजन अपने भक्तों के हृदय में आराध्य रूप कृष्ण के रूप में वो, अब गोपियों के साक्षी के रूप में उनके हृदय में किस रूप में रहेंगे? गोपी जन वल्लभ के रूप में रहेंगे। इसलिए अपने भक्तों के हृदय में सब समय स्फूर्ति प्राप्त होते रहते हैं, स्फूर्ति प्राप्त होते रहते हैं। मैंने जब कृष्ण का चिंतन करती हैं वो या निजी भक्तगण गोपियां, तो उनके इंद्रियों पर प्रत्येक इंद्रियों में वो स्फूर्त होते हैं, समस्त इंद्रियों में ही, आंखों में शब्द के रूप में, नासक सुगंध के रूप में, समस्त रूप में, जैसे चैतन्य महाप्रभु के जीवन में देखा जाता है। और ये तो अंतर में स्फूर्ति प्राप्त है और बाहर में नाना प्रकार के अवतारों में प्रकट होकर के अवस्थान कर, नाना प्रकार के अवतार स्वयं वही हैं। और इसको ये भी कहा जा सकता है कि इन रूपों में प्रकट होते हैं या अपने से इन लोगों को प्रकट करते हैं, केवल शब्दों का है। फिर आया समझ में कि नहीं? कृष्ण ही राम निसिंह बगल की बामन है और अलग से नहीं है, कोई तत्व नहीं, या अपने से अपनी स्वरूप शक्ति से अपने रहते हुए भी और अपने से सब अवतारों को प्रकट करते हैं। एक तो पहला हुआ जो अब स्वयं कृष्ण ही अवतार, राम निसिंह कल्कि बामन और नहीं है, कृष्ण ही है। और दूसरा अपने से प्रकाश करते हैं, इसके द्वारा पर ब्रह्म परमात्मा सर्वेश्वर और सर्व अवतारी का बीज कृष्ण को कहा गया। इसलिए कृष्ण को पर ब्रह्म, ब्रह्म तो सभी हैं किंतु पर ब्रह्म नहीं, ये पर ब्रह्म परमात्मा, परमात्मा माने परमात्मा, आत्माओं में भी परमात्मा, परम परमात्मा ये भी कह सकते हैं। सर्वेश्वरेश्वरत्व, समस्त ईश्वरों के भी ईश्वर हैं, अनादिराज गोविंद, और सर्व अवतारों के बीज हैं, इन्हीं से सभी प्रकटित होते हैं और उन्हीं स्वरूपों में ऐश्वर्य इत्यादि की परम कष्टा, उन रूपों में ऐश्वर्य की परम कष्टा है। साक्षात प्रकट द्वारा वो देव की जन्म भाव स्वयं प्रकट होते हैं, साक्षात प्रकट के द्वारा भी तब देवकी के गर्भ से प्रकट होते हैं। जन्म भाव ये प्रसिद्धि है, अथवा दूसरा अर्थ करेंगे बाद मात्र, विवाद मात्र है, अर्थात जसोदा के पुत्र हैं, उसमें बाद नहीं है, इसमें जन्म बाद है। और जन्म बाद मैंने एक और भी होता है प्रसिद्धि, देवकी से जन्म ग्रहण करिया चाहिए इसलिए वे देवकी पुत्र, वसुदेव पुत्र, देवकी नंदन इत्यादि नामों से परिख्यात है। विशेष करके जन्म के कारण गोकुल आनन इत्यादि संबंधी, गोकुल में देवकी वसुदेव को कहा जे हमको गोकुल में ले चलो और वो ले गए। इसके पहले इसमें ये भी आ जाएगा, कृष्ण जगत में क्यों प्रकट हुए? पहला कारण, असुरों का विनाश करके धर्म की प्रतिष्ठा कर। परित्रणाय साधुनां विनाशाय च दुष्कृतं धर्म संस्थापनाय संभवामीति वे। इसके अतिरिक्त ऋषियों मुनियों के किसी को वर दिया गया है, किसी को अभिसंपात दिया गया है उसको पूर्ण करने के लिए। नारद जी ने अभिसंपात किया और जाओ तुम कृष्ण द्वापर युग में वृक्ष होकर के जन्म लेगा और वहीं पर तुम्हारा उद्धार होगा। दंडकारण्य वासियों को वर दिया था, उनको भी पूरा कर देंगे। लाख करोड़ों भक्तों की इच्छा को पूर्ण कर देंगे। भक्त विनोदाय बहुत प्रकार की लीलाएं करते हैं, किंतु मैं इन सबको गौण मानता हूं। मुख्य क्या मानता हूं? अपने भक्तों का, गोपियों का विनोदन करने के लिए मधुर रस से उनके साथ में क्रीड़ा कौतुकी, क्रीड़ा कौतुक कहते हैं, या क्रीड़ानक माने पुतल, उनके हाथ के पुतल बन गए हैं। इसके लिए ये जगत में दिखाने के लिए ये प्रेम के कितने वशीभूत हैं। इसलिए गोपी प्रेम को प्रकट करने के लिए और उनकी अधीनता पराधीनता स्वीकार करने के लिए आना ही मुख्यतम उनका प्रयोजन है। अंत में गौ माता भूभार से त्रस्त होकर के डर कर ब्रह्मा के शरण में गई, गाय का रूप धारण किया, क्योंकि गाय कृष्ण को बहुत प्यारी है और वो शंकर इत्यादि को लेकर के फिर सागर के निकट पहुंचे और पहुंच करके आराधना की और उनकी समाधि में ये सुनने में आया कि मैं प्रकट हो रहा हूं, हमारी सेवा के लिए गोकुल में ये सब जितने देवता लोग हैं और लोग अपने आए और राधा जी की सेवा करने के लिए गोकुल में और मथुरा में वो जन्म ग्रहण। इस प्रकार से ये सब लीलाओं को उसके अंदर में समझो। विशेष करके जन्म होने के बाद में वसुदेव महाराज कृष्ण को किसी भी पात्र में, कहते हैं सूप में, उनको लेकर जमुना जी को पार किया। श्रीगाल ने पद दिखलाया, जोगमाया ने व्यवस्था की और शेष नाग ने छत्र धारण किए वर्षा से। वर्षा कृष्ण के जन्म में हो रही थी, अब बड़ी आंधी चल रही थी, क्यों? जोग माया की क्रिया, जो सब लोग सो रहेंगे कोई बाहर नहीं निकलेगा रात में और आधी रात में सभी लोग सो जाएंगे, इसलिए उत्तम काल चुन करके उत्तम उपायों के द्वारा जोग माया में सारी व्यवस्था की और गोकुल दे आए। हथकड़ी बेड़ी अपने आप खुल गई, दरवाजे पट खुल गए, लोहों के 7 दरवाजे, और वहां गए देखा सो रही हैं जसोदा मैया, नंद बाबा सो रहे हैं और उनका भी कपाट खुल गया, वहां रख करके और लड़की को ले आए, दोनों एक हो गए। इत्यादि ये सब लीलाओं को जो श्रीमद् भागवत में या अन्यत्र वर्णन किए गए हैं किसी के अंतर्गत में चिंतन, लीला चिंतन करनी चाहिए। इसलिए ये श्लोक संपूर्ण भागवत का सार। ऐसे जो अपूर्व सिद्धांत हैं, वृतांत हैं, तथा मातृ पितृ प्रतिस्तुति, देवताओं ने माता पिता की स्तुति की, इन लोग माता पिता ने भी कृष्ण के जन्म होने के बाद में जब चतुर्भुज रूप में देखा,
दस्ता हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति कर, और गर्भ में देवताओं ने स्तुति की, उसमें सत्य प्रथम सत्य परम सत्य योनि सत्यस्य निहितम सत्य सत्य सत्यात्मकम काम शरणम। और वे गोकुल में आए, आजकल जो सीरियल निकले हैं ना सब उल्टा पुल्टा, उसमें देखा है नंद बाबा जगे हुए हैं और क्या क्या किए हैं, नाउ यू कैन टेल समथिंग।
Nivas means residence place, and Jana means people. So this can have many meanings. First of all, that Krishna is Ashray, he's the shelter or residence place of all people, all jivas, all living entities. Everyone exists within him. And another meaning, Jananivas, means that all people are the residence place of Krishna. In other words, he lives inside them. He's in the heart of everyone. So everyone exists in him, and he also exists within everyone. So it's called Jananivas. Then another meaning, the word Jan can be taken to mean Swajan or Nijajan. That means he resides in the association of his own near and dear associates and family members. And also, he resides within their hearts in a special way, in the very form in which they always remember him as their beloved. So, for the general people, he resides in their hearts, how? As Paramatma. And for the devotees, he resides in their heart as their Ishtadev. And for his Nijajan in Vrindavan, such as the gopis, he's always in the heart of gopis, in his fullness, Gopi Jana Vallabha. So what does it mean that he resides in their heart? It means that they attain a spurti of him. They attain a vision of him within their heart. But what kind of spurti? This is not only a vision. This is a spurti of all their senses. In other words, moment by moment, they realize how he looks. They realize his fragrance. How is the sound of his voice and his food, by all senses, they have spurti of him within their heart, and therefore, Jayati Jananivasa. So everyone has so many means which are suitable for meditation of the devotee. So here, Jananivas is the shelter of everyone, also means that all avatars have come to him. He's Sarveshvareshvara. He's the supreme controller of all controllers. He's the avatar beach. He's the root cause of all incarnations. Anadi Adi Govinda, Savakarna Karna. Krishna has become Ram. Krishna has become Narsingadev. Krishna has become Vamandev. All the incarnations, they're all Krishna's own forms. He's Parabrahma. Jananivas also indicates that he's Parabrahma. He's the supreme absolute truth. He's Paramatma, and he's the Paramakashta, the ultimate limit of Aishwarya, all opulence. So, now, Srila Gurudev has explained Jananivas, now he's explaining Devaki Janmavado. So, compare these two. Jananivas is the ultimate limit of all opulence, all avatars have come from him. So, he's Swayam Prakash. Jananivas indicates that he's self-manifest. But that person who is self-manifest, he is what? Devaki Janma. He chooses by his own sweet will to be born from the womb of Devaki.
Bhavaj. Devaki Janmavaj has so many meanings. One meaning of Janmavaj means that his birth from the womb of Devaki is a Vaj. Hindu word Vaj means it's well known. Everyone speaks about it. It's prasiddha. It's famous. So he is famous as the son of Devaki. But another meaning of the word Vaj means vivaj, argument, controversy. In other words, it is a point of controversy whether he is the son of Devaki or not. So, he's famous as Vasudev Putra, son of Vasudev. He's famous as Devaki Nandan. This is true. But he told Vasudev Maharaj, after his appearance, take me to Gokul. And the Vasudev Maharaj carried him to Gokul. Why did Krishna appear? What is the reason for this Devaki Janmavaj? Why did he appear? There are so many reasons. First of all, Krishna said in Gita, Parikthalaya Sadhunam, Vinasha Chaduskitam, Dharma Sanstapanate Asambhavami Yuge Yuge. Millennium after millennium, I appear to establish religious principles. I appear to protect and deliver those who are sadhus, my devotees. And I appear to destroy all the demons. So all his pastimes of reciprocating with the devotees and destroying demons, all are included here in this kata, Jati Jana Nivaso Devaki Janmavaj. Oh, why did Krishna appear? Because Narad had given a curse to the sons of Kuvera, Navakuvera and Manigri. And when they begged for mercy, okay, you become trees. But in Dwapara Yuga, when Krishna appears, then he will deliver you. So Krishna appeared to fulfill the promise of Narad to Navakuvera and Manigri. Where did Krishna appear? Because in his incarnation as Lord Ram, when he met the rishis of Dandakaranya, they had a desire to become his beloveds, but it was not possible in that incarnation. So he gave a benediction to them, and therefore to fulfill the benediction which was offered to the rishis, he has appeared. Jati Jana Nivaso, Devaki Janmavaj. So all these katas, they come in this line. They will be meditated upon the devotee on the basis of this line. But Srila Gurudev said that the Mukhya Prayojan, the main objective of his appearance, was to manifest to the whole world the glories of the prema of the gopis and to show to the world how he is adinata, that means he is subjugated, he is controlled and submissive to the gopis because of the influence of their supreme love for him. So, how did he appear? Why did he appear? Prithivi Devi, the goddess of earth, assumed the form of a cow because cows are very dear to Krishna. And along with Brahmaji and Shiva, they came to the shore of the ocean of milk and they offered prayers. And then, through Kiranakashaya Vishnu, Krishna sent the message that sooner I will appear, so the demigod should also take birth in Yadu dynasty and Krishna dynasty in order to render service and assist in these pastimes. So, after Krishna appeared in Mathura, then Vasudev Maharaj carried him to the Jamuna. There was very heavy rainfall, but Anantashesh appeared above him and protected him from the rain. He could not see a way to cross the Jamuna because it was flooded and very flooded and very turbulent. But Yogamaya sent one jackal who was crossing at a particular place that was shallow to show him the way. At that time, no one saw anything. Everyone was asleep. Even when he arrived in Gokul, Nandabha was asleep, Mother Yashoda was asleep, and he put down Krishna, and Vasudev Krishna merged with Yashoda Nandan Krishna. And he picked up the baby girl and returned. And no one saw a thing. Why? Because Yogamaya made everyone sleep. So Yogamaya, she makes all perfect arrangements for the pastimes of Krishna. And therefore, this verse is the essence of Srimad Bhagavatam. And Srila Sanatana Goswami Pad, through the medium of his commentary, is explaining to all the devotees in what way they should do Leela Smaran, in what way they should chant Harinam and remember this verse and meditate on all the pastimes of Krishna from the very beginning. When Krishna was in the womb of Devaki, at that time, all the demigods headed by Brahma and Shiva, they came and they did stavstuti, they offered prayers to Devaki, when Krishna was in her womb. And then, when Krishna manifested in his 400 form, Vasudeva and Devaki, talents duty to Krishna. Very famous verse is glorifying him as the absolute truth. So in this way, the devotees, they remember this verse, and this verse causes manifestation in their heart of all of the pastimes of Krishna from beginning to end.
और भी कितने करुणाशील हैं, कृपालु दयालु हैं, स्वयं वसुदेव और देवकी को अपना पूर्व जन्म वृतांत सुनाया। पहले जन्म में तुम देती, तुम कश्यप और अदिति थी। लाखों वर्ष तुम लोगों ने तपस्या, कठोर तपस्या की, क्या हाँ, और इसके बाद में बट बहुत तपस्या की तो मैंने दर्शन दिया। आज वर मांगो बस, तो कश्यप जी ने अथवा कृष्णगर्भ प्रिश्नी, उन लोगों ने वर मांगने के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा जे वो हमारी पत्नी अदिति बतलाएगी या सुतपा बतलाएगी। तो उन लोगों ने कहा तुम्हारा जैसा पुत्र हमको हो। तो कृष्ण ने कहा जी मैंने सोचा कि हमारे जैसा तो और पृथ्वी में और कोई कहीं त्रिलोकी में नहीं है, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आया हूँ। और जिस रूप से हमारी आराधना थी, शंख चक्र गदा पद्म, देखो वैसे ही लेकर के आया। तो उनको विश्वास हुआ, फिर हाथ जोड़ करके स्तव स्तुति इत्यादि। और उधर कृष्ण ने स्वयं यशोदा मैया नंद बाबा को नहीं कहा, वो तो ब्रह्मा जी के हो करके इसको, बल्कि बायदरायणी सुखदेव गोस्वामी ने और व्यास देव जी ने वर्णन किया। कृष्ण को अपनी कहानी कहने की जरूरत, ये ऐश्वर्यमय लीला नहीं होनी होगी, इसलिए उनसे अपने आप नहीं कहा, बल्कि इन लोगों ने वर्णन किया कि पहले जन्म में हम द्रोण और पशु थे, ये लोग द्रोण और धरा थे, और उसके पहले भी द्रोण धरा थी। वो लोग बहुत तपस्या की, किसकी? ब्रह्मा जी की तपस्या की, और उससे वो प्रसन्न होकर के आए और बोले जे वर मांगो। तो उन्होंने कहा जे तुम्हारा कृष्ण के प्रति, परब्रह्म कृष्ण के प्रति हमारी वात्सल्य भक्ति हो, वात्सल्य प्रेम भक्ति वही वात्सल्य। ये पुत्र होने का वर नहीं मांगा, आज इन लोगों ने एक ही वाक्य से दोनों चीज मार मांग लिया। कृष्ण के प्रेम से मांग लिया जो बेटा भी और वात्सल्य रस भी, सभी कुछ इन्होंने मांग लिया। बुद्धिमान थे, कहते ये ब्रह्मा जी के वर से कैसे हो गया? तो इसलिए हो गया जो ब्रह्मा जी जानते थे भविष्य को, और इसलिए उनको जान करके देखा जैसे ये तो आएंगे उस वंश में, परजन्य के वंश में आएंगे, तो इसने उन्होंने कह दिया जो ठीक है तुम्हारे पुत्र होकर के आएंगे, क्योंकि वो जानते हैं ना, इसलिए उन्होंने कह दिया। इसमें ऐश्वर्य की लीला भी नहीं आई, ऐश्वर्य मिश्रित है किंतु माधुर्य की पराकाष्ठा। इस प्रकार से इन सब को इसके अंदर में ले लेना चाहिए, ये सब लीलाओं को भी। और फिर वहां आकर पुतना वाली लीला, नंद बाबा का मथुरा में जाना, कंस का कर चुकाना, और आने पर पुतना का शरीर देखा और उसे जलाया तो अगुरु हो गया, ये भी देखा। और तब से यशोदा मैया का प्रेम और दुगना चौगुना बीसगुना और भी बढ़ने लगा। उसको क्या कहते हैं? रिन्यू, नवीनीकरण। प्रेम एक रस में रहने से, जिसमें तरंगे नहीं है, विलास नहीं है, वो प्रेम शिथिल होता। इसलिए ब्रजवासियों का अपने प्रति प्रेम तरंगमयी बनाने के लिए कभी पूतना को लाते हैं, कभी सकटासुर को, तृणावर्त को, नहीं तो ये असुर ब्रज में आ नहीं सकते। इसलिए असुरों का आना ये क्या है? जोग माया की क्रिया है, कृष्ण की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। इसलिए इन सब लीलाओं को भी इसके अंतर्भुक्त कर लेना चाहिए। नाउ यू कैन एक्सप्लेन। हाँ, देवकी जन्म बादों में आ जाएगी लीला चिंतन के लिए।
This line, Jayanti Nanivaso Devaki Jatmavado, it also communicates to the devotees that Krishna is very, very merciful, very compassionate. Why? That he took birth either in connection with Vasudeva Devaki or Nanda and Yashoda. This shows his great mercy. Why? Because Vasudeva Devaki, in a previous birth, their names were Krishni and Sukhapa. And they did very, very hard austerities. And they worshipped Lord Narayan. And they, when they satisfied him, he wanted to give them a benediction. So they prayed to him, "We want to have a son like you." So Lord Narayan, he said, "There is no one like me, so myself, I will have to become your son. And I will show you my full-handed form, because that is the form in which you have done my aradhana." So after that, then he also appeared as their son when in their next birth Krishna and Sutapa became Kasyapa and Aditi. And then in their next birth they became Vasudev and Devaki. So now, Madhya Shoda and Nanda Maharaj, Narada and Vyas, they have explained in the Shastra that in a previous life they were Drona and Dara. They have their eternal forms, but there are sadhus who enter into them. So Drona and Dara, they did very hard austerities to satisfy Lord Brahma. Now we see in the relationship between Krishna and Vasudeva Devaki, Krishna directly told Vasudeva Devaki, "Oh, you worshipped me in your previous lives and you have been my mother and father. This is the third time." He said them directly. But Krishna never said directly to Vasudeva, sorry, to Nanda Maharaj and Madhya Yashoda. Why? Because this is Madhurya Lila. In Madhurya Lila, if this will be revealed, the Lila cannot be full of sweetness. So it was not told by Krishna directly himself, but Vyasudeva and Narada, they have explained these things. So Drona and Dara, they did austerities and they took a benediction from Lord Brahma. They did not ask Lord Brahma that Bhagavan should become their son, but rather they asked, "Oh, we want to love Bhagavan in Vatsalya Rasa." So this includes that he should be their son. So they were more intelligent, because Vasudeva and Devaki, they wanted the Lord as their son, but the moment he appeared, they lost him. So they had no chance to relish the Vatsalya Rasa. So by asking for Vatsalya Rasa Seva, they got Krishna as their son, and also they were able to relish this service. So Brahmaji, he gave this benediction, and he knew what was happening in the future. He has no power to benedict them, actually, but he knew what would happen in the future. So he informed them that you will appear in the dynasty of Parjanya. So Parjanya is the father of Nanda Maharaj. And Supreme Lord will become your son. So in this verse, Aishwarya is there. It is included. But the verse also includes the ultimate limit of the Madhurya Leelas also. So when Krishna Devaki Janmavado. He appeared in Gokul. Then, what happened? Kamsa sent Putana. How is this Krishna manifesting his mercy to his devotees? We see that when Putana came, Nanda Maharaj was not there. He had gone to Mathura. And when he was coming back, then the Brijvasis, they were burning the deceased, the body of the deceased Putana. And fragrance was coming like aguru. And he smelled this fragrance. But Madhya Shoda, she was there. And by this pastime of Putana coming to Vrindavan, she had so much fear that Krishna was in danger. And then somehow or other, by the mercy of Narayan, Krishna was saved. And therefore, this is Krishna's mercy on his devotees. Because by these pastimes, he renews their praying. Their praying is already new. But by coming into danger and causing anxiety, then their praying intensifies even more. So Srila Gurudev says that these pastimes of the demons coming to Vrindavan in Krishna's childhood, what do? The Brijvasis have praying. And their praying is like an ocean. But the ocean is more beautiful when it has waves in it. So Yogamaya arranges for the demons to come to Vrindavan to make the ocean of the Brijvasis praying Tarangita. That means all very beautifully full of waves.
इसमें भक्त कृपा की विशिष्टता भगवान की कृपा से भी अधिक दिखलाई गई। ब्रह्मा जी के बर से कहां माधुर्य भाव आया, नंदनंदन के पुत्र में वात्सल्य भाव आया, और इनमें वात्सल्य भाव ना आकर के पुत्र भाव आया। इसलिए भगवान की कृपा से भी अधिक वैशिष्ट भक्त कृपा। आई टोल्ड व्हाट ही एक्सप्लेन द स्पेशलिटी ऑफ भक्त मर्सी इज मोर सुपीरियर देन द मर्सी ऑफ हिमसेल्फ कृष्ण। सो यू शुड ट्राई टू प्लेज भक्त। If you want to have Krishna more, his love and affection more, and in these bhaks, gopis are most superior, in them Radhika, so why not to take the feet of Radhika, and then our whole desires will be successful.